पृष्ठ संख्या 119, अध्याय 8, गांधी का सत्याग्रह, कुछ शंकाएं एवं निवारण। गांधी नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो महान थे ही, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी तथा पैनी सूझबूझ के व्यक्ति थे। 1919 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश करते ही भारत की परिस्थितियों का सही मूल्यांकन किया था। उन्होंने एक क्रांतिकारी की भांति परिस्थितियों के मुकाबले के लिए सक्रिय कदम उठाए जो अहिंसक थे। भारत जैसे देश में जहां आधुनिक युग के हथियारों से लैस होकर विदेशी लोग हुकूमत कर रहे थे, अहिंसा का रास्ता अपनाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक सच्चे क्रांतिकारी की भांति उनका अपना एक सामाजिक दर्शन तथा एक योजना थी, जो दक्षिण अफ्रीका के यात्रा के दौरान लिखे और हिंद स्वराज में प्रकाशित उनके लेख से सर्वप्रथम प्रकट होती है। एक सच्चे सत्याग्रही की भांति गांधी ने क्रांति के अपने कार्यक्रमों में जनता का सहयोग प्राप्त किया। उनमें जहां एक ओर क्रांति की अनिवार्यता का अनुभव और उद्विग्नता थी, वहीं उपयुक्त अवसर की तलाश में शांत बैठे रहना धैर्य भी था। सफल सत्याग्रह की भांति जनता की नब्ज की उन्हें सही पहचान थी। वे उनके हृदय का स्पंदन सुनते थे। राजनीति की प्रत्येक लहर का सदुपयोग करने की उनमें क्षमता थी। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कब संघर्ष शुरू करना चाहिए, कब पैंतरा बदलना चाहिए, कब झुक जाना चाहिए, कब शत्रु की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए तथा कब उसे टाल देना चाहिए। वर्तमान युग में गांधी जी का सत्याग्रह कहाँ तक व्यवहारिक और उपादेय है, यह जानने के लिए उनके विचारों तथा जिन संदर्भों में उन्हें व्यक्त किया गया का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 120। गांधी की मान्यता थी कि सत्याग्रह के दर्शन के अनुसार आचरण करने के लिए असाधारण स्त्री पुरुषों की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त अभ्यास के पश्चात सामान्य व्यक्ति भी अपने व्यवहारिक जीवन में इसे कार्यान्वित कर सकता है। बहुत से साधारण व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक सत्याग्रह का प्रयोग किया है। निश्चय ही इसके लिए धैर्य, उदारता, सहनशीलता, आत्मसंयम आदि सद्गुणों की आवश्यकता है। गांधी का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति निरंतर अभ्यास और प्रयत्न द्वारा अपने भीतर इन सद्गुणों का विकास कर सकता है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कुछ समाज सुधारों के सतत प्रयास के फलस्वरूप मानव जाति में दासता, मनुष्य बलि, बाल हत्या आदि ऐसी दुष्प्रथाएं से मुक्ति प्राप्त की है, जिनका निराकरण मनुष्य की दुर्बलता और स्वार्थपरायणता को देखते हुए उस समय असंभव माना जाता था। इससे स्पष्ट है, गांधी के मतानुसार मनुष्य निरंतर प्रयत्न के द्वारा कालांतर में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक नैतिक उन्नति कर सकता है। इस प्रकार गांधी सत्याग्रह को आदर्श मात्र न मानकर पूर्णतः व्यवहारिक मानते हैं। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि सत्याग्रह की व्यवहारिकता के संबंध में उनका यह मत व्यवहारिक जीवन में कठोर यथार्थ की अपेक्षा करता है। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह के प्रयोग के विषय में गांधी यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपेक्षा सामूहिक सत्याग्रह में अधिक कठिनाइयाँ और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका कारण है कि एक दो व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत से व्यक्तियों में एक साथ आत्मसंयम, सहनशीलता, धैर्य, दुख सहने की शक्ति, नैतिक बल और सद्गुण उत्पन्न करना अधिक कठिन है, जो सत्याग्रह के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति की अपेक्षा समूह में नैतिक अनुशासन स्थापित करना भी अधिक कठिन होता है। यही कारण है कि सामूहिक सत्याग्रह कभी कभी सत्य और अहिंसा के मार्ग से भटक जाता है। परंतु इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी गांधी सामूहिक सत्याग्रह की सफलता के संबंध में आश्वस्त थे। उनका विचार था कि व्यक्ति की भांति बड़े समूह को भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। वे यह नहीं मानते सत्याग्रह का मार्ग केवल व्यक्ति तक ही सीमित है और बहुत से व्यक्तियों का समूह इसका सफलतापूर्वक अनुसरण नहीं कर सकता। यदि समूह को समुचित नेतृत्व तथा प्रशिक्षण प्राप्त हो तो व्यक्ति की भांति उसमें भी सत्याग्रह के लिए आवश्यक सभी सद्गुण उत्पन्न हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 121। और वह भी अनुशासनबद्ध होकर सत्य एवं अहिंसा के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में लाखों व्यक्तियों को सत्याग्रह के लिए संगठित करके गांधी ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि अनेक कठिनाइयों और समस्याओं के होते हुए भी सफल सामूहिक सत्याग्रह संभव है। उनके सामूहिक सत्याग्रह में सम्मिलित होने वाले बहुत से व्यक्ति निरक्षर अथवा बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसमें गांधी ने अपना इस विश्वास को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सत्याग्रह के लिए असाधारण तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों का होना आवश्यक नहीं है। अपने दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास द्वारा कोई भी व्यक्ति सत्याग्रह के कठिन मार्ग पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार गांधी के सामूहिक सत्याग्रह की कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भी उसकी व्यवहारिकता में किंचित मात्र भी संदेह नहीं था। सत्याग्रह की व्यवहारिकता तथा सफलता में गांधी के इस दृढ़ विश्वास का कारण उनकी यह आधारभूत मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई, स्नेह, मैत्री, सद्भावना, करुणा आदि सद्वृत्तियाँ अनिवार्यतः विद्यमान रहती हैं, जिनके फलस्वरूप वह दूसरों के दुख से कुछ सीमा तक अवश्य ही प्रभावित होता है। कठोर से कठोर व्यक्ति भी दूसरों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त अथवा उदासीन नहीं रह सकता। अपनी इसी मान्यता को स्पष्ट करते हुए गांधी ने लिखा है कि आध्यात्मिक शक्ति की अग्नि के फलस्वरूप कठोरतम हृदय द्रवित हो जाता है। नीरो जैसा अत्याचारी व्यक्ति भी प्रेम के परिणाम स्वरूप मेमने के समान निरीह हो जाता है। मानव मात्र की अच्छाई में अपने इस दृढ़ विश्वास के कारण गांधी सत्याग्रह की सफलता द्वारा सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। वास्तविक सत्याग्रही कभी भी असफल और पराजित नहीं होता, क्योंकि उसकी शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने में नहीं अपितु स्वयं अधिकाधिक दुख झेलने में निहित रहती है। अपनी इसी नैतिक शक्ति द्वारा वह अन्याय और अत्याचार करने वाले व्यक्ति को सुधारने में कभी न कभी अवश्य सफल हो जाता है। इसमें उसे समय लग जाता है और कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं, किंतु वह अपने प्रयास में असफल नहीं हो सकता। वह अपना सत्याग्रह तब तक नहीं छोड़ता जब तक अपने उद्देश्य में उसे सफलता नहीं प्राप्त हो जाती। गांधी का कथन है, सत्याग्रही का विरोधी उसे कष्ट पहुंचाकर अपनी पराजय और उसकी सफलता को निश्चित बना देता है। मान भाव से निरंतर दुख झेलते रहने के कारण सत्याग्रही के प्रति सभी लोगों के मन में सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। पृष्ठ संख्या 122, जो अंततः उसके उद्देश्य की पूर्ति में बहुत सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार गांधी सत्याग्रह की व्यवहारिकता और सफलता के विषय में बहुत आशावादी तथा पूर्णतः आश्वस्त है, किंतु सत्याग्रह की सफलता के संबंध में गांधी का उपयुक्त आशावाद व्यवहारिक जीवन की कठोर वास्तविकता के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। मनुष्य की असहिष्णुता एवं स्वार्थपरायणता और वर्तमान युग के हिंसापूर्ण वातावरण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह की सफलता संदिग्ध ही प्रतीत होती है। मानव स्वभाव के अनिवार्य श्रेष्ठता के संबंध में गांधी की आधारभूत मान्यता को निर्विवाद रूप से सत्य मानना कठिन है। कुछ महान आशीर्वादी व्यक्तियों को छोड़कर समाज में सामान्य व्यक्ति अपनी तत्कालिक अथवा दूरगामी स्वार्थ सिद्धि को ध्यान में रखकर ही प्रायः कार्य करते हैं। वे किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से तथा सहर्ष कष्ट सहन करने के लिए उद्यत नहीं होते। ऐसी स्थिति में साधारण व्यक्तियों से सत्याग्रह के कठिन मार्ग का अनुसरण करने की आशा नहीं की जा सकती। मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का यही कठोर सत्य है, जिसकी उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। गांधी ने लगभग 40 वर्ष तक भारतवासियों को सत्याग्रह की शिक्षा दी और इसकी सफलता के लिए स्वयं निरंतर अधिकतम प्रयास भी किए, परंतु यह कटु सत्य है कि हमने वास्तव में सत्याग्रह के मार्ग पर चलना नहीं सीखा और आज भी हमारे समाज में वास्तविक सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं है। यह भी सच है कि कुछ व्यक्ति तथा समुदाय अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्याग्रह के नाम का दुरुपयोग अवश्य कर रहे हैं। उनके लिए अपने संकुचित उद्देश्यों की पूर्ति का सुविधाजनक साधन मात्र है। यही कारण है कि आज सत्याग्रह की सार्थकता और उपादेयता ही संदिग्ध प्रतीत होने लगी है। आजकल हड़ताल करना एक आम बात हो गई है। छोटी सी छोटी बात को लेकर लोग हड़ताल करते हैं, जिससे न केवल सरकार को हानि पहुंचती है बल्कि देश के विकास में भी इससे रुकावट होती है। हड़ताल असंतोष की निशानी है। सरकारी कर्मचारी, खासकर मजदूरों को अपनी हाल पर असंतोष है। राजनीतिक स्थिति भी भारत के मजदूरों को प्रभावित करने लगी है। ऐसे मजदूर नेताओं के अभाव नहीं है जो यह समझते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए हड़ताल कराई जा सकती है। पृष्ठ संख्या 123। यद्यपि गांधी ने सफल हड़ताल के लिए कुछ आवश्यक शर्तें बताई थीं, जैसे हड़ताल का कारण न्यायपूर्ण होना चाहिए, यह स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होनी चाहिए, हड़तालियों में व्यवहारिक एकमत होना चाहिए, हड़ताल न करने वालों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हड़तालियों में यह शक्ति होनी चाहिए कि संघ के कोष का आश्रय लिए बिना वे हड़ताल के दिनों में अपना पालन पोषण कर सके, इसके लिए उन्हें किसी उपयोगी और उत्पादक अस्थायी धंधे में लगना चाहिए, किंतु आज इन शर्तों का पालन नहीं होता है। जो हड़ताल बेहतर हालत में की जाती है उसमें कभी अंतिम ध्येय के तौर पर राजनीतिक मकसद की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से राजनीतिक तरक्की कभी नहीं हो सकती है, बल्कि होता यह है कि अक्सर हड़तालियों को ही इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। चाहे उन हड़तालियों का प्रभाव आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़े या न पड़े, सरकार के सामने कुछ समस्याएं जरूर खड़ी हो सकती हैं, लेकिन उसकी वजह से हुकूमत का काम नहीं रुक सकता। सत्याग्रह के अंतर्गत हड़ताल तभी करनी चाहिए जब इंसाफ कराने के दूसरे उचित साधन असफल साबित हो चुके हों। जैसा कि हम जानते हैं, राजनीतिक हड़तालों की अपनी अलग जगह है और उनको आर्थिक हड़तालों के साथ न तो मिलाना ही चाहिए और न दोनों का आपस में कोई रिश्ता रखा जाना चाहिए। अहिंसक लड़ाई में राजनीतिक हड़तालों की अपनी एक खास जगह होती है, चाहे वे जब और जैसे तैसे ढंग से नहीं की जानी चाहिए। ऐसी हड़तालें बिल्कुल खुली होनी चाहिए और उनमें लुकाव छुपाव अथवा गुंडागर्दी की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। उनकी वजह से किसी तरह का हिंसा नहीं होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हड़ताल हुई थी वो इसी तरह की थी। सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा का अन्योन्याश्रय संबंध है। हम उसकी आत्मा में सत्य रूपी ईश्वर वास करता है। गांधी ने इस सत्य के आचरण को ही धर्म माना है। गांधी ने कहा था कि सत्य के अनुकूल आचरण करना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। ईश्वर को सत्य के रूप में गांधी ने स्वीकार किया। उनके अनुसार ईश्वर अनाम है, अनादि है, सर्वज्ञ है, शक्तिमान तथा सर्वत्र विराजमान है। उसे विभिन्न नाम दिए जा सकते हैं। गांधी ने कहा, न केवल ईश्वर सत्य है बल्कि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर को गांधी सच्चित आनंद की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि उसमें स्वयं सत्य का निवास है। सत्य के साथ चित और आनंद भी है। गांधी ने जीवन पर्यंत सत्य को सर्वोपरि माना। उसकी अवधारणा थी कि जो चीज़ें सत्य के कसौटी पर खरी न उतरे वह सब कुछ त्याज है। अहिंसा का नियम भारत के लिए प्राचीन सिद्धांत के समान है। उपनिषदों तथा भारतीय दर्शन में भी बार बार मानव को अहिंसा की शिक्षा दी गई है। जैन और बौद्ध धर्म का तो मूल आधार ही अहिंसा है। गांधी ने अहिंसा का सिद्धांत मूलतः उपनिषदों और भारतीय दर्शनों, विशेषतः जैन बौद्ध ग्रंथों से ही प्राप्त किया था, परंतु उन्होंने सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा की जो व्याख्या की है वह बहुत व्यापक, युक्तिसंगत एवं संतुलित है। अहिंसा का अर्थ किसी की हत्या करना नहीं है, क्रोधवश अथवा स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, उसकी हत्या करना या उसे घायल करना हिंसा है और ऐसा न करना अहिंसा है। गांधी ने अहिंसा को और अधिक सूक्ष्म रूप में लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी के प्रति विद्वेष रखना, किसी से घृणा करना, किसी के अहित की इच्छा करना, स्वार्थवश किसी को कष्ट पहुंचाना आदि भी हिंसा है। अतः अहिंसा का पालन इन सभी दुर्गुणों से मुक्त होकर मन, वचन तथा कर्म तीनों से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका कथन है कि अहिंसा के अनुसार आचरण करने के लिए मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दया, सहानुभूति, प्रेम तथा करुणा की भावना रखनी चाहिए और उनकी सेवा तथा सहायता करके या अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए। गांधी के अनुसार यही अहिंसा का वास्तविक एवं व्यापक अर्थ है। गांधी ने बताया कि समाज में प्रचलित बुराइयों का निराकरण तथा सभी समस्याओं का समाधान शांति एवं अहिंसा के द्वारा ही किया जाना चाहिए, युद्ध और हिंसा द्वारा नहीं। उनका शांतिपूर्ण अहिंसक सत्याग्रह, जिसका उन्होंने सामाजिक बुराइयों तथा राजनीतिक अत्याचारों के विरुद्ध सफलतापूर्वक प्रयोग किया, मूलतः इसी सिद्धांत पर आधारित है। उनका दृढ़ विश्वास है कि हिंसा द्वारा अत्याचार का विरोध करने से उसमें वृद्धि ही होगी, वह कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा सदैव हिंसा को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त हिंसा करने वाले व्यक्ति का हिंसा द्वारा विरोध करना स्वयं ही अनुचित कर्म करना है जो उस व्यक्ति ने किया है। गांधी का कथन है, मनुष्य को स्वयं कष्ट सहन करके अहिंसात्मक उपायों द्वारा ही अन्याय, शोषण तथा अत्याचार का विरोध करना चाहिए। अहिंसा का यह उपदेश कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को नहीं बल्कि सभी सामान्य लोगों को भी दिया है। उनके मतानुसार अहिंसा में अपार शक्ति है और वह कभी व्यर्थ नहीं होती। पृष्ठ संख्या 135। इस प्रकार गांधी ने साधु संतों तक सीमित मानी जाने वाली अहिंसा का सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में स्वयं उपयोग करके अन्य व्यक्तियों को ऐसा करने की शिक्षा देकर इसका क्षेत्र सामान्य जन तक विस्तृत किया है। यह आधुनिक युग को उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। दो विनाशकारी विश्व युद्धों का दुखद इतिहास और वर्तमान जीवन का अनुभव इस बात का साक्षी है कि हिंसा से हिंसा का, घृणा से घृणा का, युद्ध से युद्ध का तथा प्रतिशोध से और अधिक प्रतिशोध का जन्म होता है और यह कुचक्र निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसके अतिरिक्त यदि अनुचित तथा अशुभ साधनों को वांछनीय मान लिया जाए तो उनका प्रयोग शुभ लक्ष्य की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रहता, सभी प्रकार के अशुभ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी उनका प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रकार उनके दुखद एवं अवांछनीय परिणामों को रोकना असंभव हो जाता है। इसी विचार का समर्थन करते हुए TE हिल ने लिखा है कि जब एक बार हिंसा तथा मनुष्य के जीवन और अधिकारों की उपेक्षा को उचित मान लिया जाता है तो उसे व्यवहारिक दृष्टि से केवल क्रांतिकारी उद्देश्यों तक सीमित रखना कठिन होता है और उनके कारण मनुष्यों को जो पीड़ा होती है उसकी उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। साधन अंततः साध्य के अनिवार्य अंग बन जाते हैं और उसके परिणामों को सहन करना पड़ता है, फिर चाहे कोई बात को उचित माने या न माने। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साधारणतः कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नेक तथा प्रतीत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नेक तथा प्रतीत साधनों का ही प्रयोग करना उचित एवं वांछनीय है। वस्तुतः मानव कल्याण इसी में है कि वह हिंसा का अहिंसा से, घृणा का प्रेम से, शत्रुता का मैत्री से तथा युद्ध और संघर्ष को शांति से पराजित करना सीखे। गांधी ने सदैव इसी सिद्धांत का समर्थन किया क्योंकि यही मानव जाति की उन्नति का उचित मार्ग है। गांधी ने कहा कि अपने देश की सेवा तथा उसके माध्यम से संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। स्वतंत्रता के पश्चात गांधी के राजनीति में सत्याग्रह की सफलता का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता। हमारे देश में लगभग 29 मास तक आपातकाल स्थिति लागू रही। इस संपूर्ण अवधि में लाखों निर्दोष लोगों को जो शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं दी गई, उनकी करुण कथाओं से आज पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें भरी पड़ी हैं। परंतु यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और कटु सत्य है कि इस अन्याय, शोषण तथा अत्याचार के विरुद्ध कोई सामूहिक सत्याग्रह संगठित नहीं किया जा सकता। पृष्ठ संख्या 126। व्यक्तिगत स्तर पर सत्याग्रह के जो थोड़े से प्रयास हुए हैं वे पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि उन्हें तत्कालीन शासकों ने बड़ी आसानी से कुचल दिया। इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जनसाधारण को संगठित रूप से सत्याग्रह करने का साहस तक नहीं कर सका। भारतीय राजनीति और समाज में सत्याग्रह के जन्मदाता भारत की यह स्थिति है, तो अन्य देशों में उसकी सफलता की क्या आशा की जा सकती है? हमें इस कटु सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि स्वार्थ, छल कपट तथा क्रूरता से परिपूर्ण राजनीति में सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के सफल होने की संभावना नगण्य ही है। वस्तुतः तो सत्याग्रह मनुष्य की जिस महान चरित्र तथा आत्मत्याग की मांग करता है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव प्रतीत नहीं होता। सत्याग्रह की व्यवहारिकता और सफलता में यही सबसे बड़ी बाधा है। परंतु हिंसा और अशांति से ग्रस्त विश्व के लिए सत्याग्रह के लिए श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार एक आदर्श की दृष्टि से मानव जाति के लिए सत्याग्रह की उपदेयता निर्विवाद है। सत्याग्रह के संबंध में कुछ विचारकों ने अनेक शंकाएँ उठाई हैं, जिनका स्वयं गांधी ने उत्तर दिया है। उदाहरणार्थ आर्थर मूर तथा जॉन वॉन ड्यूरेंट ने नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से सत्याग्रह की श्रेष्ठता में संदेह किया है। उनका कथन है कि सत्याग्रह ऐसे लोगों के लिए संघर्ष का साधन है जिनके पास इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। इसी कारण वे सत्याग्रह को मानसिक हिंसा कहते हैं और इसे विद्रोह अथवा युद्ध की उपेक्षा आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट नहीं मानते। परंतु सत्याग्रह के विषय में उनका यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी सत्याग्रही के लिए मन, वचन तथा कर्म से पूर्णतः सत्य और अहिंसा का पालन करना अनिवार्य मानते थे। उनका स्पष्ट और निश्चित मत था कि सत्याग्रही को अहिंसात्मक उपायों द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ करने या न करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं करना चाहिए। ऐसी हिंसात्मक बाध्यता सत्याग्रह के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। अपने इस विचार को स्पष्ट करते हुए गांधी ने लिखा है कि हमें अच्छे कार्य के लिए भी बाध्यता का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बाध्यता हमारे उद्देश्य को ही नष्ट कर देगी। हमारा आंदोलन हृदय परिवर्तन का आंदोलन है, बाध्यता का आंदोलन नहीं। यह अत्याचारी को बाध्य नहीं कर सकता। पृष्ठ संख्या 127। इस प्रकार गांधी के सत्याग्रह में किसी प्रकार की हिंसात्मक बाध्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह ही कभी किसी व्यक्ति का अहित नहीं चाहता और किसी के प्रति कोई दुराभावना भी नहीं रखता। ऐसे स्थिति में सत्याग्रह को मानसिक हिंसा कहना उचित नहीं माना जा सकता। गांधी के अनुसार सत्याग्रह दुर्बल अथवा कायर व्यक्तियों का हथियार नहीं है, क्योंकि इसके लिए महान धैर्य, आत्मसंयम तथा नैतिक बल की आवश्यकता होती है और वे गुण कायर व्यक्ति में नहीं पाए जाते हैं। सत्याग्रह के निष्क्रिय प्रतिरोध से पृथक न समझने के कारण ही आर्थर मूर ने इसे दुर्बल व्यक्तियों का हथियार माना। परंतु सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से पूर्णतः भिन्न है, अतः इसके संबंध में अर्थ और मूल का उपयुक्त मत उचित एवं युक्तिसंगत नहीं है। एक अन्य विचारक C.M. Case ने सत्याग्रह की व्यवहारिकता के संबंध में गंभीर संदेह व्यक्त किया है। उनका कथन है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए आदर्श की दृष्टि से सत्याग्रह बहुत प्रशंसनीय और प्रभावशाली साधन है, किंतु मनुष्य की सीमाओं एवं दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवहारिकता बहुत संदिग्ध प्रतीत होती है। यह मनुष्य से दृढ़धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, कष्ट सहने की शक्ति तथा उच्च नैतिक स्तर की मांग करता है, उससे अधिकतर व्यक्ति अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस प्रकार C.M. Case के मतानुसार सत्याग्रह का सिद्धांत एक महान आदर्श तो अवश्य है, किंतु वह व्यवहारिक जीवन दर्शन नहीं है। गांधी के सत्याग्रह के नियम अत्यंत कठोर हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए सत्याग्रह के सभी नियमों का पालन करना संभव नहीं है। गांधी का कहना था कि हजारों की संख्या में से यदि कोई एक व्यक्ति भी जो सत्याग्रह का नियम जानता है और उसके पालन करने की क्षमता रखता है, तो वह सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है। सत्याग्रह में संख्या का अत्यधिक महत्व नहीं होता और सफलता बहुमत के कारण नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्तियों के कारण होती है। गांधी ने अपने विरोधी पर विश्वास करने को कहा है और बताया है कि यदि विरोधी 20 बार भी विश्वासघात करे तो 21वीं बार विरोधी पर विश्वास करने को तैयार रहना चाहिए। गांधी का यह कथन उचित जान नहीं पड़ता, क्योंकि बार बार विरोधी द्वारा विश्वासघात करने से सत्याग्रही का मनोबल टूट जाएगा और बीच में ही वह आंदोलन को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 128, संदर्भ पहला हरिजन 3 जुलाई 1970, 198, दूसरा वही 13 जुलाई 1960, पृष्ठ संख्या 177, तीसरा यंग इंडिया 16/2/1921, चौथा हरिजन सेवक 3 अगस्त 1934, पांचवा वेद प्रकाश वर्मा महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन दिल्ली BL प्रिंटर्स, छठा यंग इंडिया 17 अप्रैल 1930।